एकत्र ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर स्वागत। आज हम एक बहुत ही क्या कहते हैं खास किताब पर बात करने वाले हैं। नाम है द होल ब्रेन चाइल्ड, और ये पेरेंटिंग को, बच्चों की परवरिश को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल सकती है। कई बार लगता है ना कि बच्चों को संभालना, उनकी फीलिंग्स को समझना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी।
बिल्कुल, और ये किताब ना इसी मुश्किल को आसान बनाने का एक साइंटिफिक रास्ता बताती है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि भाई बच्चे का गुस्सा या उसकी जिद को कैसे हैंडल करें, बल्कि ये समझाती कि उस व्यवहार के पीछे बच्चे के दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है। तो ये पेरेंटिंग की जो भूमिका है, जो रोल है और जो लक्ष्य है, गोल है, दोनों को एक नई दिशा देती है। मतलब हमारा रोल सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना नहीं है,
हाँ
बल्कि बच्चे के ब्रेन को डेवलप होने में मदद करना है।
हाँ
और लक्ष्य सिर्फ ये नहीं कि बच्चा बात मान ले, बल्कि ये कि वो एक इमोशनली हेल्दी और बैलेंस्ड इंसान बने।
और कमाल की बात यह है कि इसे लिखा भी दो ऐसे लोगों ने हैं जिनका कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। डॉक्टर डैनियल जे सीगल, जो एक साइकियाट्रिस्ट हैं और न्यूरोसाइंस के एक्सपर्ट हैं।
हाँ, इंटरपर्सनल न्यूरोबायोलॉजी के जाने माने नाम है वो।
बिल्कुल। और दूसरे हैं डॉक्टर टीना पिन ब्राइसन, वो एक साइकोथेरेपिस्ट हैं।
हाँ, और उन्हें परिवारों के साथ, बच्चों के साथ काम करने का बहुत प्रैक्टिकल अनुभव है।
तो यही इस किताब की खूबी बन जाती है। एक तरफ है डीप साइंस, दिमाग का विज्ञान, और दूसरी तरफ रोजमर्रा की जो पेरेंटिंग चुनौतियां हैं उनका बड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। डॉक्टर सीगल जो कॉम्प्लेक्स न्यूरोसाइंस है ना, उसको पेरेंटिंग के लिए बहुत आसान बनाते हैं। वो समझाते हैं कि हमारे रिश्ते दिमाग को कैसे शेप करते हैं, और डॉक्टर ब्राइसन उसे असल जिंदगी की सिचुएशन से जोड़ देती हैं। तो ये विज्ञान और सहानुभूति, मतलब साइंस और एम्पथी का एक बहुत पावरफुल मिक्सचर है।
तो किताब का जो कोर आइडिया है, होल ब्रेन चाइल्ड, इसका असल मतलब क्या हुआ फिर? देखिए, इसका जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो है एकीकरण, इंटीग्रेशन। मतलब दिमाग के जो अलग अलग हिस्से हैं उनको आपस में जोड़ना, ताकि वो मिलकर बेहतर तरीके से काम कर सकें। जैसे हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो लॉजिकल है, तर्क वाला, दूसरा है इमोशनल, भावनात्मक,
अच्छा,
एक हिस्सा है जो हमारी बेसिक ज़रूरतें और इंस्टिंक्ट्स, फीलिंग्स देखता है, और दूसरा हिस्सा सोच समझकर फैसले लेता है। किताब ये कहती है कि बच्चों में ये हिस्से ना अभी पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं होते, क्योंकि उनका दिमाग अभी भी डेवलप हो रहा है।
ओह, मतलब लगभग 25 साल की उम्र तक, ये तो काफी लंबा टाइम है।
हाँ बिल्कुल, तो बच्चों का दिमाग एक अडल्ट ब्रेन का छोटा वर्जन नहीं है, वो बन रहा है।
इसीलिए शायद वो कभी कभी इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या कभी उनकी बातें लॉजिक से एकदम परे लगती हैं।
एग्जैक्टली, उनका दिमाग आप समझ लीजिए एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जैसा है,
हाँ,
और ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम इस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में बच्चों की मदद कर सकते हैं। ये सर्वाइवल पेरेंटिंग से, मतलब जैसे तैसे बस दिन काट रहे हैं वाली पेरेंटिंग से हटकर थ्राइव पेरेंटिंग की बात करती है, मतलब बच्चों को सच में फलने फूलने में मदद करना। और इसके लिए ना ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बड़े आसान से मेटाफर्स, रूपक इस्तेमाल किए गए हैं।
हाँ, मैंने भी सुना ये ऊपर वाला दिमाग और नीचे वाला दिमाग सुनने में बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। चलिए इन्हीं स्ट्रेटजीज और आइडियाज़ में थोड़ा और डीप चलते हैं। किताब में ब्रेन के लेफ्ट और राइट साइड को जोड़ने की बात है।
ये क्या चीज़ है?
हाँ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिक, लैंग्वेज, सीक्वेंस, क्रम का काम करता है,
ठीक है,
और जो राइट ब्रेन है वो इमोशंस, नॉन वर्बल क्यूज जैसे चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज और बिग पिक्चर को समझता है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर अपने राइट ब्रेन से ऑपरेट करते हैं, मतलब वो भावनाओं में बह जाते हैं।
जब कोई बच्चा खिलौने के लिए जमीन पर लेटकर रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो उस वक्त उसका राइट ब्रेन पूरी तरह हावी है।
तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? ज़्यादातर तो हम उसे लॉजिक समझाने लगते हैं या फिर डांट देते हैं, पर ये किताब शायद कुछ और कहती है। यहीं पर वो पहली स्ट्रेटजी आती है, कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट, है ना?
बिल्कुल, और ये पेरेंटिंग का नजरिया बदलने वाली स्ट्रेटजी है, सच में।
जब बच्चा उस इमोशनल तूफान में है, राइट ब्रेन हावी है, तो उसे लॉजिक देना यानी लेफ्ट ब्रेन की भाषा बोलना,
बेकार है।
हाँ, वो दीवार पे सर मारने जैसा है, वो सुनेगा ही नहीं। पहले जरूरत है कनेक्ट करने की, यानी उसके राइट ब्रेन से जुड़ने की। कैसे? सहानुभूति से, उसकी फीलिंग को एक्नॉलेज करके, नाम देके, जैसे लगता है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है या तुम बहुत डिसअपॉइंटेड लग रहे हो, और खुद शांत रहकर।
यानी पहले उसकी भावना को समझना, उसे एक्सेप्ट करना, उसे ये फील कराना कि हाँ, हम समझ रहे हैं, उसके साथ हैं। फिर रीडायरेक्ट का क्या मतलब है?
जब बच्चा थोड़ा सा रेगुलेट हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, उसे लगे कि हाँ मुझे समझा जा रहा है, तब हम रीडायरेक्ट करते हैं। यानी अब हम लेफ्ट ब्रेन को इन्वॉल्व करते हैं, तब हम लॉजिक दे सकते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं या रूल समझा सकते हैं। तो फंडा ये है, कनेक्शन पहले, करेक्शन बाद में, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। ये पेरेंटिंग के गोल को ही बदल देता है। सिर्फ उस पल के व्यवहार को ठीक करने से ज्यादा जरूरी है रिश्ता बचाना और बच्चे को इमोशनल सेफ्टी देना।
ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल है? मान लीजिए बच्चा कुछ खतरनाक कर रहा है या टाइम बहुत कम है।
ये बहुत वैलिड सवाल है। किताब ये बिल्कुल नहीं कहती कि नियम या बाउंड्रीज जरूरी नहीं है। सेफ्टी तो हमेशा पहली प्रायोरिटी है, लेकिन ये तरीका लॉन्ग टर्म में बच्चे को अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें मैनेज करना सिखाता है। हो सकता है उस मोमेंट में तुरंत वैसा रिजल्ट ना दिखे जैसा डांटने से दिखता है, पर ये बच्चे के दिमागी विकास में एक इन्वेस्टमेंट है। और यहीं पर वो दूसरी स्ट्रैटेजी, नेम इट टू टेम इट, वो भी काम आती है, भावनाओं को नाम देना। जब बच्चा अपनी उस तेज भावना को, वो जो फीलिंग है, उसको शब्द दे पाता है, जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे डर लग रहा है,
अच्छा,
तो वो भावना थोड़ी कम ओवरवेलमिंग हो जाती है। उसे काबू करना, टेम करना आसान हो जाता है। लैंग्वेज यहाँ एक टूल बन जाती है उस बड़ी अनकंट्रोल्ड वेव को समझने का।
भावनाओं को नाम देकर उन पर काबू पाना, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब उस दूसरे मेटाफर पर आते हैं, ऊपर वाला दिमाग और नीचे वाला दिमाग, ये क्या है?
ये भी दिमाग को समझने का एक बहुत ही हेल्पफुल तरीका है। देखिए, नीचे वाला दिमाग हमारे ब्रेन का निचला ज्यादा पुराना हिस्सा है। इसमें ब्रेन स्टेम और लिम्बिक सिस्टम आते हैं। ये हमारी बेसिक जरूरतें जैसे सांस लेना और जो हमारी इंटेंस इमोशंस होती हैं, गुस्सा, डर और हमारी फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया, उसको कंट्रोल करता है। ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है।
और ऊपर वाला दिमाग?
ये तो कुछ सुपर हीरो टाइप लगता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये हमारे दिमाग का ऊपरी ज्यादा एडवांस्ड हिस्सा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हायर लेवल काम करता है, सोचना, समझना, प्लानिंग करना, डिसीजन लेना, सेल्फ कंट्रोल रखना, एम्पथी रखना, मोरालिटी समझना, ये सब मुश्किल काम। ये नीचे वाले दिमाग जो तेज आवेग वाले रिएक्शंस होते हैं उन पर ब्रेक लगा सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि बच्चों में ये ऊपर वाला दिमाग अभी पूरी तरह बना नहीं होता, ये धीरे धीरे डेवलप होता है।
तो जब बच्चे का नीचे वाला दिमाग हावी हो जाता है, जिसे किताब में फ्लिपिंग द लिड कहा गया है, मतलब जब वो गुस्से या डर से एकदम बेकाबू हो जाता है, तब उसका वो सोचने समझने वाला ऊपर वाला दिमाग काम नहीं कर रहा होता।
बिल्कुल नहीं। अब समझ लीजिए वो हिस्सा ऑफलाइन हो गया है, और ऐसी सिचुएशन में अगर हम चिल्लाएं या डांटें या सजा दें, मतलब जिसे किताब कहती है एनरेज, तो हम उसके नीचे वाले दिमाग को और भड़का रहे होते हैं। इससे बात और बिगड़ती है, सुलझती नहीं।
तो फिर उपाय क्या है? किताब की तीसरी स्ट्रैटेजी है इंगेज, डोंट एनरेज। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि उस वक्त हमें बच्चे के नीचे वाले दिमाग से लड़ना नहीं है, बल्कि हमें कोशिश करनी है कि उसके ऊपर वाले दिमाग को वापस ऑनलाइन लाया जाए, उसे इंगेज किया जाए।
कैसे?
शांत रहकर, शायद कुछ ऐसे सवाल पूछकर जिससे उसे सोचना पड़े, जैसे तुम्हें क्या लगता है इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है,
या उसे चॉइस देकर, क्या तुम पहले 5 मिनट शांत होना चाहोगे या हम अभी बात करें, या बस कनेक्ट करके, सहानुभूति दिखाकर, वही कनेक्ट वाली तकनीक।
इससे धीरे धीरे उसका ऊपर वाला दिमाग वापस एक्टिव होने लगता है।
यानी यहाँ भी पेरेंट का रोल बदल रहा है, सिर्फ कंट्रोल करने वाले से बच्चे को रेगुलेट होने और सोचने में मदद करने वाले फैसिलिटेटर तक।
और चौथी स्ट्रेटेजी है यूज इट और लूज इट। इसका मतलब है कि ऊपर वाले दिमाग की एक्सरसाइज करवानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, दिमाग का जो हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं वो मजबूत होता जाता है। यही तो न्यूरोप्लास्टिसिटी है। हमारा एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन को फिजिकली बदलता है। तो हमें बच्चों को मौके देने चाहिए कि वो अपने ऊपर वाले दिमाग का इस्तेमाल करें। उन्हें छोटे मोटे फैसले लेने देना, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने के लिए एनकरेज करना, दूसरों के नजरिए से सोचने के लिए प्रॉम्प्ट करना, जैसे तुम्हें क्या लगता है जब तुमने उसे धक्का दिया तो उसे कैसा लगा होगा। ये सब एक्टिविटीज उनके ऊपर वाले दिमाग को मजबूत बनाती हैं, उसकी वायरिंग करती हैं।
किताब पे मेमोरी यानी याददाश्त और सेल्फ यानी स्वयं को जोड़ने की भी बात है, और फिर खुद को दूसरों से जोड़ने की भी मी वी कनेक्शन, ये सब कैसे जुड़ता है इस पूरी पिक्चर में?
ये सब ब्रेन इंटीग्रेशन का ही हिस्सा है। अगर संक्षेप में कहूँ तो हमारी यादें, खासकर बचपन की जो इमोशनल मेमोरीज होती हैं, जो अक्सर हमें ठीक से याद भी नहीं होती, इम्प्लिसिट मेमोरी कहते हैं उसे, वो हमारे आज के व्यवहार को बहुत प्रभावित करती हैं। किताब बताती है कि कैसे हम बच्चों को मुश्किल अनुभवों को कहानी के रूप में समझकर प्रोसेस करने में मदद कर सकते हैं, ताकि वो उन पर हावी ना हो जाएं। और मी वी कनेक्शन का मतलब है खुद को समझना मी और दूसरों के साथ जुड़ना वी। यहीं पर माइंडसेट का कॉन्सेप्ट आता है।
माइंडसेट, ये क्या चीज है?
माइंडसेट मतलब अपने मन को और दूसरों के मन को देखने और समझने की क्षमता, यानी ये देखना कि किसी व्यवहार के पीछे क्या भावनाएं, क्या विचार, क्या इरादे हो सकते हैं। जब हम बच्चे से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दोस्त क्यों रो रही थी, तो हम उसे माइंडसेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यही एम्पथी, सहानुभूति की जड़ है, ये समझना कि दूसरों का इंटरनल एक्सपीरियंस हमसे अलग हो सकता है। ये पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, बच्चे को सिर्फ अच्छा बिहेव करना नहीं सिखाना, बल्कि एक समझदार और केयरिंग इंसान बनाना सिखाना।
और इसी से जुड़ी एक और स्ट्रैटेजी है, फैमिली फन फैक्टर बढ़ाना, यानी परिवार में हंसी मजाक और साथ में अच्छा टाइम बिताना भी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है।
ओ, बेहद जरूरी। ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है, साथ में खेलना, हंसना, पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करना, ये सब सुरक्षित जुड़ाव, सिक्योर अटैचमेंट बनाते हैं। ये जो वी वाली फीलिंग है ना, उसको मजबूत करते हैं, और ये बच्चों को इमोशनल सिक्योरिटी देती है, मुश्किल समय में रेजिलियंस यानी लचीलापन बढ़ाती है। और हाँ, ये रिश्ते को रिपेयर करने का यानी सुधारने का मौका भी देता है, अगर कोई झगड़ा या मनमुटाव हुआ हो, क्योंकि किताब बार बार कहती है परफेक्ट पेरेंटिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ना ही वो गोल है। ज़रूरी ये है कि हम गलतियों के बाद रिश्ते को सुधारें।
तो कुल मिलाकर इस किताब से कुछ बड़े टेकअवेज मिलते हैं। पहला तो ये कि पेरेंटिंग का रोल ही बदल गया है, हम सिर्फ बच्चों के बिहेवियर को मैनेज नहीं कर रहे, हम उनके ब्रेन को शेप करने में मदद कर रहे हैं, एक तरह से हम ब्रेन स्कल्प्टर हैं।
हाँ, और लक्ष्य भी बदल गया है, सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बल्कि इंटीग्रेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस और रेजिलियंस। दूसरा बड़ा मैसेज है उम्मीद का, होप का। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि ब्रेन बदल सकता है, मतलब अगर पहले कुछ गलतियां हुई भी हैं पेरेंटिंग में, तो भी सुधार मुमकिन है, इट्स नेवर टू लेट। तीसरा, वही बात, कनेक्शन पहले, करेक्शन बाद में। बच्चे को समझने की कोशिश करना डांटने या लेक्चर देने से कहीं ज्यादा जरूरी है।
और ये बात भी कि बच्चों का जो मुश्किल बिहेवियर होता है वो अक्सर उनके डेवलपमेंट का एक नॉर्मल हिस्सा होता है, उनका ऊपर वाला दिमाग अभी बन रहा है, उन्हें हमारे सपोर्ट की जरूरत है, डांट की नहीं। मुझे लगता है भारत जैसे माहौल में जहां बच्चों पर पढ़ाई का, कंपटीशन का इतना प्रेशर रहता है, ये समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है।
बिल्कुल, परीक्षा के स्ट्रेस में बच्चा परेशान है तो उसे सिर्फ पढ़ाई करो कहने के बजाय पहले उसकी चिंता को समझना, कनेक्ट, और फिर साथ मिलकर कोई स्ट्रैटेजी बनाना, रीडायरेक्ट, ये होल ब्रेन पेरेंटिंग हुई। या जैसे भाई बहन लड़ रहे हैं तो सिर्फ ये फैसला सुनाने के बजाय कि किसकी गलती है, उन्हें एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने, माइंडसेट के लिए गाइड करना।
किताब में कुछ कोट्स भी हैं जो इन आइडियाज को अच्छे से कैप्चर करते हैं, जैसे वो नेम इट टू टेम इट वाली बात, भावनाओं को नाम देकर काबू में करना।
हाँ, या फिर ये वाला कि जहां ध्यान जाता है वहां न्यूरल फायरिंग होती है और न्यूरल कनेक्शन बढ़ता है। वे अटेंशन गोज, न्यूरल फायरिंग फ्लोज एंड न्यूरल कनेक्शन ग्रोज। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का बिल्कुल सार है। हम जिस चीज पर फोकस करेंगे, जिस स्किल को प्रैक्टिस करेंगे, ब्रेन में वो पाथवे मजबूत होगा। अगर हम एम्पथी पर ध्यान देंगे तो बच्चा एम्पथी सीखेगा।
अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल, इन सब अच्छी अच्छी बातों को असल जिंदगी में कैसे अप्लाई करें? कोई एकदम कॉन्क्रीट उदाहरण, मान लीजिए बच्चा मॉल में खिलौने के लिए जमीन पर लेट गया है, रो रहा है, जो अक्सर होता है।
हाँ, ये तो क्लासिक सिचुएशन है। तो टिपिकल तरीका क्या होगा? गुस्सा करना, खींच कर ले जाना, या शायद झुंझला कर दिला देना। होल ब्रेन तरीका होगा, पहला स्टेप कनेक्ट करें, नीचे झुकें, शांत आवाज में कहें, तुम्हें वो टॉय बहुत पसंद आया है और तुम बहुत निराश हो कि मैं अभी नहीं ले सकती। उसकी फीलिंग को एक्नॉलेज करें, वैलिडेट करें। जब वो थोड़ा शांत हो तब रीडायरेक्ट करें। हम इसे तुम्हारी बर्थडे विश लिस्ट में लिख सकते हैं, या चलो घर चलकर देखते हैं तुम्हारे पास कौन कौन से कूल टॉयज हैं। लक्ष्य सिर्फ उस मोमेंट को मैनेज करना नहीं है, बल्कि उसे निराशा से डील करना सिखाना है, लॉन्ग टर्म स्किल बिल्डिंग।
या मान लीजिए दो भाई बहन बहुत बुरी तरह लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं,
तो तुरंत जज बनकर सजा सुनाने के बजाय पहले दोनों को थोड़ा शांत होने में मदद करें, शायद थोड़ी देर के लिए अलग करके, फिर एंगेज डोंट एनरीज, उनसे पूछें कि क्या हुआ, दोनों की साइड सुने बिना जजमेंट के, फिर माइंडसेट प्रैक्टिस कराएं। तुम्हें क्या लगता है जब तुमने उसकी चीज़ फेंकी तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा, या जब उसने तुम्हें ये कहा तो तुम्हें कैसा लगा, और फिर उन्हें मिलकर कोई हल निकालने के लिए इनकरेज करें। हाँ, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है डांटने से, पर ये उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग और एम्पथी सिखाता है, जो कहीं ज़्यादा बड़ा और ज़रूरी लक्ष्य है।
तो संक्षेप में कहूँ तो ये तरीके सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, ये शायद हम सबके लिए अपने रिश्तों में, अपने काम पर यूजफुल हो सकते हैं।
निश्चित रूप से, हम अडल्ट्स का भी तो लिड फ्लिप होता है, हम भी तो इमोशनल हो जाते हैं, हमें भी अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन, ऊपर वाले और नीचे वाले दिमाग को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। और माइंडसेट, दूसरों के नज़रिए को समझना, तो ये तो हर रिश्ते की बुनियाद है, चाहे वो पोस्टल हो या प्रोफेशनल।
इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे दिलचस्प बात क्या रही?
मेरे लिए जो सबसे पावरफुल आइडिया है वो रिपेयर का है, मतलब सुधार का। पेरेंटिंग में हमसे गलतियाँ होंगी ही, हम हमेशा शांत नहीं रह पाएंगे, हमेशा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, इट्स ओके। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उन पलों के बाद बच्चे से दोबारा जुड़ें, ज़रूरत हो तो माफ़ी मांगें और उस रिश्ते को ठीक करें। ये बच्चों को सिखाता है कि रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, उनमें मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन्हें ठीक किया जा सकता है। ये रेजिलियंस सिखाता है, और ये पेरेंट्स को भी बहुत उम्मीद देता है कि परफेक्ट पेरेंट नहीं बनना है, कनेक्टेड पेरेंट बनना है।
हाँ, और मेरे लिए सबसे अहम बात ये समझ है कि बच्चे जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए मुश्किल व्यवहार नहीं करते। उनका बिहेवियर अक्सर उनके विकासशील दिमाग का, उनकी किसी ज़रूरत का या किसी स्किल की कमी का संकेत होता है। ये जानने भर से ही पेरेंट की एम्पैथी अपने आप बढ़ जाती है, और ये समझना कि हमारा रोल सिर्फ कंट्रोलर का नहीं बल्कि एक तरह से बच्चे के ब्रेन आर्किटेक्ट का है, ये पेरेंटिंग को एक ज़्यादा मीनिंगफुल और उम्मीद भरा काम बना देता है। ये किताब मुश्किल साइंस को कहानियों और सिंपल स्ट्रेटजीज में बदलकर हम सबको ये पावर देती है।
बिल्कुल सही कहा, और शायद यही वो एक विचार है जिसके बारे में श्रोता सोच सकते हैं। अगली बार जब आप किसी मुश्किल पेरेंटिंग मोमेंट में हों, तो खुद से बस एक सवाल पूछें, मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, सिर्फ अभी इस व्यवहार को रोकना, और मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, बच्चे को एक ज़रूरी स्किल सिखाना और रिश्ता मजबूत करना। ये छोटा सा सवाल शायद आपके रिएक्शन को, आपके रिस्पॉन्स को बदल दे। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।